नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, ग्रेगर होपे की पुस्तक क्लाउड स्ट्रेटेजी, अ डिसीजन बेस्ड अप्रोच टू सक्सेसफुल क्लाउड माइग्रेशन। क्लाउड अपनाने पर एक व्यावसायिक और वास्तुशिल्पीय मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक क्लाउड को केवल सर्वर, स्टोरेज या नई होस्टिंग व्यवस्था के रूप में नहीं देखती, बल्कि निर्णयों की ऐसी श्रृंखला मानती है जो संगठन की लागत, संचालन, सुरक्षा, टीमों और व्यावसायिक क्षमता को बदल देती है। इसका उद्देश्य किसी एक प्रदाता, उत्पाद या तकनीकी नुस्खे को सर्वोत्तम घोषित करना नहीं है। इसके बजाय लेखक पाठक को यह समझने में मदद करते हैं कि अलग परिस्थितियों में अलग विकल्प और समझौते उचित क्यों हो सकते हैं। पुस्तक का केंद्र प्रश्न है कि संगठन क्लाउड की लोकप्रिय धारणाओं से हटकर अपनी वास्तविक जरूरत, सीमाओं और अपेक्षित परिणामों के आधार पर कैसे निर्णय ले। आर्किटेक्ट एलिवेटर श्रृंखला के अनुरूप इसका दृष्टिकोण तकनीकी टीमों और वरिष्ठ व्यावसायिक नेतृत्व के बीच संवाद को भी महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए यह पुस्तक विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें माइग्रेशन की दिशा तय करनी है, न कि केवल उसे लागू करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, क्लाउड माइग्रेशन को तकनीकी स्थानांतरण नहीं, निर्णयों की रणनीति मानना। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि क्लाउड माइग्रेशन का अर्थ किसी मौजूदा सिस्टम को ज्यों का त्यों दूसरे डेटा सेंटर में ले जाना नहीं है। ऐसा स्थानांतरण आरंभिक रूप से तेज लग सकता है, लेकिन वह पुराने ढांचे की जटिलताओं, खर्चों और संचालन संबंधी निर्भरताओं को भी साथ ले जा सकता है। होपे का निर्णय आधारित दृष्टिकोण संगठन को पहले यह स्पष्ट करने के लिए कहता है कि वह क्लाउड से वास्तव में क्या पाना चाहता है, जैसे तेज बदलाव, बेहतर लचीलापन, नए डिजिटल उत्पादों की क्षमता या अवसंरचना संचालन का अलग मॉडल। इसके बाद विकल्पों को उनके लाभ और कीमत दोनों के साथ देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अधिक प्रबंधित सेवा टीम का संचालन भार कम कर सकती है, पर प्रदाता पर निर्भरता बढ़ा सकती है। अत्यधिक स्थानांतरण योग्यता भविष्य के विकल्प बचा सकती है, पर विकास और संचालन को अधिक जटिल भी बना सकती है। इसीलिए पुस्तक कथित सर्वोत्तम अभ्यासों को बिना संदर्भ अपनाने से सावधान करती है। सही निर्णय वह है जो संगठन की रणनीति, कौशल, जोखिम स्वीकार्यता और समय सीमा के अनुरूप हो। यह दृष्टि क्लाउड चर्चा को उत्पादों की सूची से निकालकर स्पष्ट प्राथमिकताओं और सचेत समझौतों की चर्चा बनाती है। दूसरा, व्यवसाय। संगठन और प्रौद्योगिकी के बीच वास्तुशिल्पीय संबंध क्लाउड यात्रा अक्सर तब कमजोर पड़ती है जब नेतृत्व इसे लागत घटाने की पहल समझता है, जबकि तकनीकी दल इसे केवल आधुनिकीकरण परियोजना मानता है। पुस्तक इस दूरी को कम करने में एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की भूमिका पर जोर देती है। इस भूमिका का केंद्र हर तकनीकी कार्य को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि व्यावसायिक उद्देश्य, संगठनात्मक बदलाव और तकनीकी निर्णय एक दूसरे से जुड़े रहें। होपे के अनुसार, आर्किटेक्चर समूह को नेतृत्व के सामने क्लाउड संबंधी प्रचार और वास्तविक क्षमता का अंतर स्पष्ट करना चाहिए। क्लाउड कुछ समस्याएं सरल कर सकता है, लेकिन वह खराब स्वामित्व, अस्पष्ट उत्पाद प्राथमिकताओं या कमजोर संचालन अनुशासन को अपने आप ठीक नहीं करता। दूसरा काम, एक समग्र दृष्टि उपलब्ध कराना है ताकि किसी विभाग का स्थानीय लाभ पूरे संगठन के लिए नया जोखिम न बन जाए। तीसरा काम, अनुभवों को साझा दिशा निर्देशों में बदलकर अपनाने को सक्षम करना है। इस तरह आर्किटेक्ट केवल मानक लागू करने वाला प्रहरी नहीं रहता, वह निर्णयों के पीछे की धारणाओं को स्पष्ट करने, विकल्पों की तुलना कराने और अलग टीमों को एक सामान्य दिशा में जोड़ने वाला माध्यम बनता है। पुस्तक विशेष रूप से क्यों और क्या के प्रश्नों पर ध्यान रखने की सलाह देती है, जबकि लागू करने का कैसे संबंधित विशेषज्ञ टीमों के पास रहना चाहिए। तीसरा, फ्रॉस्ट सिद्धांत से क्लाउड रेडी अनुप्रयोगों की जांच। पुस्तक से जुड़ा फ्रॉस्ट सिद्धांत उन गुणों का संक्षिप्त ढांचा देता है जो किसी अनुप्रयोग को क्लाउड परिवेश के लिए अधिक उपयुक्त बनाते हैं। फ्रॉस्ट का अर्थ है फ्रूगल, रिलोकेटेबल, ऑब्जर्वेबल, सीमलेसली अपडेटेबल, इंटरनली सिक्योर्ड और फेलियर टॉलरेंट। फ्रूगल का आशय सीपीयू, मेमोरी, आरंभ समय और परिनियोजन आकार जैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है। रिलोकेटेबल अनुप्रयोग को किसी एक मशीन या स्थान से ऐसी कठोर निर्भरता से बचाता है कि स्थानांतरण या पुनर्प्राप्ति कठिन हो जाए। ऑब्जर्वेबल होने का अर्थ है कि टीमों को सिस्टम के व्यवहार, त्रुटियों और संचालन स्थिति को समझने योग्य संकेत मिले। सीमलेस अपडेटेबिलिटी बदलावों को कम व्यवधान के साथ जारी करने की क्षमता पर केंद्रित है। आंतरिक सुरक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि केवल बाहरी नेटवर्क सीमा पर भरोसा पर्याप्त नहीं, सुरक्षा को अनुप्रयोग और उसकी आंतरिक बातचीत में भी होना चाहिए। फेलियर टॉलरेंस यह मानकर डिजाइन करने को कहता है कि घटक विफल होंगे, यह सूची कोई यांत्रिक प्रमाण पत्र नहीं है। इसका व्यावहारिक महत्व यह है कि माइग्रेशन से पहले टीमें अपने अनुप्रयोग की वास्तविक तैयारी, कमियों और सुधार क्रम पर बात कर सके। इससे क्लाउड रेडी का अस्पष्ट दावा ठोस इंजीनियरिंग प्रश्नों में बदलता है। चौथा, प्रचार से परे क्लाउड के लाभ, सीमाएं और समझौते। क्लाउड के बारे में चर्चाएं अक्सर असीम विस्तार, कम लागत और तेज नवाचार जैसे आकर्षक वादों पर रुक जाती है। पुस्तक का निर्णय केंद्रित ढांचा इन दावों को परिस्थिति के आधार पर जांचने की मांग करता है। मांग के अनुसार संसाधन बढ़ाना उपयोगी है, लेकिन उसके लिए अनुप्रयोग का डिजाइन, खर्च की दृश्यता और संचालन प्रक्रिया भी अनुकूल होनी चाहिए। उपयोग के आधार पर भुगतान प्रारंभिक निवेश घटा सकता है, फिर भी अनियंत्रित संसाधन, डेटा स्थानांतरण और लगातार चलने वाली सेवाएं खर्च बढ़ा सकती हैं। इसी तरह प्रबंधित सेवाएं तकनीकी श्रम घटा सकती हैं, लेकिन वे संगठन के कौशल, नियंत्रण और प्रदाता निर्भरता के संतुलन को बदल देती हैं। पुस्तक का संदेश क्लाउड विरोध नहीं है, बल्कि यह बताता है कि लाभ अपने आप नहीं मिलते, वे उचित विकल्पों और लगातार अनुशासन से बनते हैं। नेताओं को यह पूछना चाहिए कि कौन सी क्षमता वास्तव में व्यवसाय के लिए मूल्यवान है, कौन सा जोखिम स्वीकार्य है और किस निर्णय को बाद में बदलना कठिन होगा। इस तरह क्लाउड का मूल्य केवल अवसंरचना को बाहर ले जाने में नहीं, बल्कि उन पुरानी बाधाओं को पहचानने में है जिन्हें आधुनिक तकनीक कम कर सकती है। स्पष्ट समझौते दर्ज करने से संगठन बाद में परिणामों की समीक्षा भी कर सकता है, बजाय इसके कि असफलता का कारण केवल क्लाउड को ठहराए। अंत में, क्लाउड अपनाने में ज्ञान साझाकरण और सक्षम संचालन मॉडल। सफल क्लाउड माइग्रेशन एक बार की परियोजना नहीं, बल्कि संगठन की काम करने की पद्धति में परिवर्तन है। पुस्तक के संदर्भ में एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का एक प्रमुख दायित्व दिशा निर्देश बनाना और अपनाने को सक्षम करना है। इसका मतलब केवल कठोर नियमों की सूची जारी करना नहीं है। उपयोगी मार्गदर्शन उन अनुभवों को साझा ज्ञान में बदलता है जो अलग टीमों को सुरक्षा, परिनियोजन, निगरानी और संसाधन प्रबंधन के मामलों में बार बार शुरुआत से सीखने से बचाता है। फिर भी केंद्रीय मानकीकरण को स्थानीय जरूरतों और प्रयोग की क्षमता को पूरी तरह दबाना नहीं चाहिए। क्लाउड की गति का लाभ तभी मिलता है जब टीमें तय सीमाओं के भीतर स्वायत्त निर्णय ले सकें और उनके परिणामों की जवाबदेही भी लें। इसलिए संगठन को कौशल, जिम्मेदारियों और संवाद के नए संतुलन पर विचार करना पड़ता है। पारंपरिक अवसंरचना स्वामित्व वाली टीमों का काम समाप्त नहीं होता, पर उनका ध्यान प्लेटफॉर्म, सुरक्षा, सक्षम करने वाली सेवाओं और विश्वसनीय संचालन की ओर बदल सकता है। पुस्तक का व्यापक संकेत है कि तकनीकी निर्णयों को संगठन के ऑपरेटिंग मॉडल से अलग नहीं किया जा सकता। यदि अनुभवों से सीखने, मानकों को सुधारने और नेतृत्व तक वास्तविक जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, तो अच्छी तकनीक भी बिखरे हुए प्रयोगों में बदल सकती है। निष्कर्ष में, क्लाउड स्ट्रेटेजी उन एंटरप्राइज आर्किटेक्ट्स, प्रौद्योगिकी नेताओं, उत्पाद और प्लेटफॉर्म जिम्मेदारों तथा व्यावसायिक निर्णयकर्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त है जो क्लाउड माइग्रेशन की दिशा, प्राथमिकताएं और परिणाम तय करते हैं। यह उन पाठकों के लिए कम उपयोगी होगी जो किसी विशेष क्लाउड प्रदाता की सेवाओं, कमांडों या परिनियोजन चरणों का विस्तृत तकनीकी ट्यूटोरियल चाहते हैं। इसकी व्यावहारिक उपयोगिता निर्णयों को बेहतर प्रश्नों में बदलने में है। पाठक लागत, गति, सुरक्षा, नियंत्रण, कौशल और प्रदाता निर्भरता को अलग अलग विषय नहीं, बल्कि परस्पर जुड़े समझौते के रूप में देखना सीखते हैं। फ्रॉस्ट जैसा ढांचा अनुप्रयोगों की तैयारी पर ठोस बातचीत शुरू करने में सहायक हो सकता है, जबकि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर पर चर्चा नेतृत्व और तकनीकी टीमों के बीच भूमिका स्पष्ट करती है। अपोम हेस्तो कस्तोन इंद्री अर्पोम अल्लकरिय पदव अमरत अरियो ओरम दुरेस कपोम असरी से वो अनिको परेदो सबगी अतिरिबाद एडसे न पिता नरब दिगने हरि बावरत को डबल करी कपत करो को सगुर बस खुरत और खाप कतमोरे। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर तकनीकी निर्देशों की लंबी सूची में नहीं, बल्कि क्लाउड को व्यावसायिक और संगठनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में रखने में है। यह क्लाउड को अनिवार्य गंतव्य या सार्वभौमिक समाधान की तरह प्रस्तुत नहीं करती। इसके बजाय यह बताती है कि मूल्य परिस्थितियों के अनुरूप लिए गए, स्पष्ट रूप से समझे गए निर्णयों से आता है। इसलिए पुस्तक उन संगठनों के लिए विशेष महत्व रखती है जो केवल माइग्रेट नहीं करना चाहते, बल्कि अपने तकनीकी विकल्पों को दीर्घकालिक व्यावसायिक उद्देश्य से जोड़ना चाहते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ग्रेगर होपे, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।